तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
ओम शांति। तीन बार हो गई। आज हमारे बीच में साकार मम्मा बाबा के हस्तों से पले बहुत महान विभूति भ्राता मोहन सिंगल जी विराजमान है। हम कर्तोध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका प्रोफाइल भी बहुत बड़ा है, आपकी उपलब्धियां त्याग तपस्या सेवा की, लौकिक जीवन की और अलौकिक जीवन की बहुत उपलब्धियां हैं। 1962 में आप बाबा के बच्चे बने, ज्ञान प्राप्त हुआ, मम्मा बाबा के सानिध्य में रहे, इसलिए आज भाई साहब को रिक्वेस्ट करके ही मैं बता रही थी कि भाई साहब मम्मा बाबा के अंग संग रहे, तो भाई साहब को रिक्वेस्ट किया कि क्यों नहीं आप साकार बाबा के अंग संग का कुछ सुनाओ। तो फिर भाई साहब ने ये टॉपिक दिया, साकार बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था। देखो, एक हम सभी अव्यक्त पदेश है, हम सब सुनी हुई या पढ़ी हुई बात सुनाते हैं। आप वो अपना आंखों देखा हाल और साथ में बिताए हुए दिनों में जो प्रैक्टिकल में बाबा के अंग संग समय बिताया और देखा, वो हमारे सामने रखेंगे और हमें ले जाएंगे उस 62 से जब से आप उनके अंग संग रहे और उनकी एक एक एक्टिविटी को देखा और उस वाइब्रेशंस को प्रैक्टिकल में फील किया। आप क्लास वन ऑफिसर रहे हैं अपने समय में जॉब में, और 96 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के फिर संपूर्ण जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। जो तो पहले भी समर्पित जैसी ही सेवाएं कर रहे थे, लेकिन एक ऑफिशियली जॉब छोड़ करके रिटायरमेंट लेकर के ज्ञान सरोवर में आप अपनी विशेष तौर पर वहां रहते हैं और सेवाएं तो ऑल वर्ल्ड में देते हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं, संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के भी मेंबर हैं, और जो हमारा साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग है उसके आप चेयरपर्सन है, ज्ञान सरोवर एकेडमी के आप कोऑर्डिनेटर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और विंग का जो पत्रिका निकलती है उसके आप चीफ एडिटर भी हैं। आपने बहुत अभियानों को लीड भी किया है, प्लानिंग भी किया है, और विश्व के कोने कोने में आपने बाबा का परचम फहराया है, और पद यात्राएं जो निकली हैं उसमें भी आप यूथ विंग के एक सेक्रेटरी के पद पर भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। भारत के 20 शहरों में स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी का निर्माण आपने करवाया है, बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं, पर्यावरण श्री अवार्ड 92 में एचआरडी मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा प्राप्त हुआ, 2013 में राजस्थान की राज्यपाल द्वारा ग्रीन आइडोल अवार्ड मिला, और इसके बीच में बहुत सारे मिले। मैंने आपको पहला और आखिरी अवार्ड सुनाया क्योंकि मैंने पहले भी बोला लौकिक जीवन की भी और अलौकिक जीवन की भी, आपकी अपनी त्याग तपस्या और सेवा के आधार पर पांडव गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट सबकी तरफ से ही बहुत सारी उपलब्धियां आपके पास हैं। आप यज्ञ के आधार स्तंभ हैं और जो यज्ञ के हमारे मुख्य भाई हैं उनमें से आप एक हैं, और मैं आपको वाय डाटा देखा तो फड़ा की 63 में आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली, तो इट मीन्स भाई साहब 80 प्लस तो है, तो यज्ञ के अंदर उलट है, जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं तो उनकी जिम्मेवारियां और उनका सब कुछ बहुत बढ़ता जाता है। भाई साहब हमारे प्रेम दीदी ना जो पंजाब जोन के इंचार्ज बने तो 73 के थे, तो हंसने लगे, कहते इस उम्र में लोग रिटायर होते और हमारी नौकरी लग गई क्योंकि जोन इंचार्ज बने तो नेचुरल है पूरे जोन को संभालना और पूरे जोन में चक्कर लगाना, और 75 प्लस में आकर के आम लोग घर के बुजुर्गों को कहते हैं अब तुमने कहीं नहीं जाना, तुम घर में बैठ जाओ। तो यज्ञ में ये बाबा की शक्ति है कि जो 80 प्लस में ऐसे भाग दौड़ करके पूरी सेवाएं कर रहे हैं। तो भाई साहब के लिए दो शब्द हैं, भाई साहब ना फूलों की कमी थी ना बहारों की कमी थी, इस गुलशन में बस आपके आने की कमी थी, आप पहुंच गए और हम संपन्न हो गए। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम सुनेंगे भाई साहब को।
ओम शांति। बहन जी परिचय दे रही थी और परिचय में कुछ अवार्ड्स की भी बात बताई। इस लौकिक दुनिया में कई अवार्ड्स ऐसे ही मिल जाते हैं, जैसे बहुतों को 30 अवार्ड भी मिलता है। अब 30 तो स्थापन हुई नहीं दुनिया में, अवार्ड्स पहले ही दे दिए। इसी तरीके से हम सब बच्चे बाबा के पुरुषार्थी हैं, और पुरुषार्थी में और भी बल आता रहे इसलिए बाबा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ कुछ और योजनाएं निकालते रहते हैं, बातें बताते रहते हैं, और इस प्रकार से हम बच्चे संपूर्णता को प्राप्त कर लें। जब विषय की बात चल रही थी तो हमने जैसा बहन जी ने बताया, तो जब साकार बाबा वाला विषय आया तो बहन जी ने कहा ज्यादातर तो इसमें बाबा की मुख वंशावली ही है और अव्यक्त जन्म हुआ है, इसलिए साकार बाबा की बात रहेगी, और उसमें भी कर्मातीत स्थिति की, क्योंकि हम सभी को कर्मातीत तो बनना ही है, इसीलिए कर्मातीत अवस्था की बात को लेकर के हम इस बात का प्रारंभ एक मम्मा के जीवन की घटना से कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं मम्मा ने कब शरीर छोड़ा था, 65 तारीख जून। तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा की आत्मा ऊपर गई सूक्ष्म वतन, शरीर तो यहीं था, साकार बाबा भी यहीं थे। तो मम्मा जब ऊपर गई तो अव्यक्त बाप दादा, क्योंकि साकार ब्रह्मा बाबा भली हाँ हो लेकिन सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है ही। तो वो और शिव बाबा, उन्होंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा की जैसे सदा ही ये रहता था कि थोड़ा सोच के फिर बोलते थे, तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने कर्मातीत स्थिति का तो अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है और बाबा भी वहाँ पर हैं, बाबा और सब बच्चे मिलकर तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, तो जाओ शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मम्मा को नीचे भेजा, मम्मा काफी समय तक नीचे रही, फिर मम्मा जब ऊपर वतन में गई तो बाबा ने पूछा बच्ची का करा अनुभव? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो अनुभव नहीं किया। क्यों बच्ची? अब तुम्हें तो भेजा इसीलिए ही था कि बाबा जब मैं नीचे गई तो शरीर तो ठंडा हो गया था, मैंने बहुत प्रयास किया कि शरीर में प्रवेश करूं लेकिन कुछ उसमें हलचल नहीं हुई, और जब कुछ हलचल ही नहीं हुई, प्रवेश ही नहीं कर पाई, तो बिना प्रवेश किए हुए कर्मातीत स्थिति का अनुभव कैसे करती? बात भी सही थी, कर्मातीत अवस्था माने कर्म करते भी बिल्कुल कर्म से न्यारा अतीत अवस्था, लेकिन कर्म तो कर ही नहीं सकते थे जब तक आत्मा शरीर में न हो। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, तो अब तो तुम्हें पुनर्जन्म के लिए जाना पड़े, माता के गर्भ में प्रवेश करके नया जन्म लेना पड़े, और तुम उस नए जन्म में फिर पुरुषार्थ करोगी और उसमें फिर कर्मातीत अवस्था जब प्राप्त होगी तब फिर तुम जब आओगी तो उसके बाद तुम्हें परम धाम में उसी स्थिति में भेजेंगे, कर्मातीत अवस्था अर्थात हम सबकी भी संपूर्ण अवस्था। तो परम धाम में हम जिस स्थिति में बैठे रहते हैं ब्राह्मण, वो हमारी संपूर्ण अवस्था है, और उससे फिर जब नीचे आते हैं, पाठ बजाते हैं कलयुग अंत तक और फिर ब्राह्मण बनते हैं, तो तब पुरुषार्थ करते हैं। और अगर कर्मातीत हो गए, जैसे अभी तक तो कौन कर्मातीत हुआ है, कौन हुआ है? एक ब्रह्मा बाबा ही, और तो कोई भी कर्मातीत हुआ ही नहीं है, क्योंकि सबने पुनर्जन्म लिया है, भले बहुत क्लोज कर्मातीत अवस्था तक पहुंच गए लेकिन थोड़ा बहुत जो निमित्त आत्माओं की सेवा करनी बाकी थी तो उन घरों में जन्म लिया है हमारी दादियों ने, मम्मा ने आदि आदि ने, और वहाँ पर उन आत्माओं की निमित्त सेवा कर रहे हैं थोड़ी बहुत, और फिर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके हम सभी बाबा मम्मा और हम सभी बच्चे इकट्ठे ही परम धाम जाएंगे। तो पहले भी यही था, तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो सबको एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ, और बाबा भी कहते थे कि मम्मा ऐसे कैसे जा सकती है। मम्मा ऐसे कैसे जा सकती है, और पहले हम सब लोग यही समझते थे बाबा मम्मा हम सब बच्चे इकट्ठा ही जाएंगे। तो मम्मा जब गई थी शरीर छोड़ के, तो बाबा भी कहते थे कि उस समय कि जब शरीर रखा हुआ था, मामा जस्ट कोई ड्रामा में पार्ट बजा रही है, दिखा रही है, और मामा जो है वो आवाहन करो बच्चों आ जाएंगे। लेकिन ये भी बाबा का पार्ट था बच्चों को पक्का करने का। तो इस तरीके से ये मामा ने पार्ट प्ले किया, और बाबा ने कहा मामा को कि बच्ची जाकर सब बच्चों को कहना कि इस संगम समय में बच्चों को जो भी पार्ट मिला हुआ है शरीर में, किसी को भी ऐसा तो पार्ट नहीं है कि कंप्लीट सेटिस्फेक्शन का हो, तन मन धन संबंध आदि में कहीं ना कहीं कोई ऊंच नीच है। शरीर अगर अच्छा है तंदुरुस्त है धन की कमी है, धन अगर अच्छा है संबंधों में कहीं कटुता है, तो कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं है। इसीलिए पेपर आते रहते हैं पुरुषार्थ। तो हर बच्चे से ये कहना कि कभी भी अपने वर्तमान जीवन से वो असंतुष्ट ना हो, वर्तमान जीवन से। भाई धन की कमी है, नहीं तो कभी संकल्प आता है अरे धन बहुत होता तो ये कर लेते, बाबा के और भवन बनवा देते आदि आदि। तन अगर तंदुरुस्त होता तो तन से और सेवा करते, लेकिन तन में बीमारी है कमजोर है आदि आदि। तो बाबा ने कहा कि बच्चों से कहना ये जो भी तन संगम युगी मिला हुआ है ये बेस्ट तन है आपके हिसाब से, तो इसीलिए इससे कभी भी परेशान नहीं होना, कंटालना नहीं। यहाँ पर तन मन धन संबंध आदि में जो कोई भी मिले हुए हैं सब आपको संपूर्ण बनाने के लिए ही मिले हुए हैं। अंतिम कर्मातीत अवस्था आपको इससे ही प्राप्त करनी है, इसलिए कभी भी इससे कंटाल ना आए, परेशान ना हो। तो ये तो मामा का अंतिम दिन का अनुभव था, जब मामा ने शरीर छोड़ के गए और यहाँ शरीर रखा था, ये हम सब ने सुना ही होगा। और इसके बाद यहाँ पर बाबा के निर्देशन में बाबा ने दीदी दादी को नियुक्त किया कारोबार और संभालने के लिए, और इस तरह यज्ञ का कारोबार चलता रहा। तो हम भी जब 1962 में आए, तब लखनऊ यूनिवर्सिटी में तब ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय हम आए और बाबा कानपुर आए थे। पहले साकार बाबा भी ना कई जगह जाया करते थे, जहाँ जहाँ सेंटर थे और बच्चे बाबा से मिला करते थे वहाँ पर। तो लखनऊ वालों ने भी एक दिन, लखनऊ कानपुर पास पास है, 2 घंटे का रास्ता है, तो लखनऊ वालों ने भी प्रोग्राम बनाया, चलो बाबा से मिलेंगे। हम लोग पहुँचे निर्धारित तिथि पर कानपुर में, लेट हो गया था, धुंध थी, सर्दी का मौसम था, कोहरा काफी था, तो बस भी धीरे 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 गई और वहाँ पहुँचे तो बाबा की क्लास तो पूरी हो गई थी, बस बाबा उठने वाले थे, चिट चैट कर रहे थे बाबा बच्चों से, और इंतजार हो रहा था लखनऊ वालों का। तो लखनऊ वाले पहुँचे तो बस बाबा ने बच्चों का स्वागत किया। हम तो तब बहुत रिलेटिवली यंग थे, 16-17 साल के थे, तो बड़े बड़ों का सबका पहले टर्न आया, और कपल्स थे, परिवार वाले थे, बुजुर्ग थे, सब बाबा से मिले। बाद में फिर कम उम्र वालों का टर्न आया, हमारा भी जब टर्न आया तो बाबा जैसे सबसे मिलते थे, दृष्टि देते थे, बाबा ने दृष्टि दी और बाबा ने कहा आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो बाबा इंतजार कर रहा था तो हम तो यही समझे कि हम लोगों की बस सुबह 7 बजे पहुंचने वाली थी और 9 बजे पहुंची, तो ये शायद लेट हो गए, तो बाबा इसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ज्ञान में भी तब कुछ महीने ही हुए थे। तो बाबा ने हमने बताया कि ऐसे लेट हो गए, तो अच्छा बस लेट हो गई इसलिए, लेकिन बाबा तो तुम्हारा बस, बाबा तो भाव में बहे हुए थे, आओ बच्चे, ऐसे बाबा ने हाथ फैला दिया। सबको बाबा ऐसे ही मिलते थे, तो बाबा ने हाथ फैलाया, हम बाबा की बाह में गए। और ये सबका ही, नयों का भी अनुभव होता था, जैसे बाबा हाथ फैलाता था हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी, क्योंकि आप सबने सुना ही है बाबा ने बहुत प्रैक्टिस की थी, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, परिवार वालों के लिए भी और जो भी आता था, तो बाबा की दृष्टि एकदम ब्रकुटी में रहती थी और आते थे, बस बाबा ने कहा कि आओ बच्चे, और फिर बाबा ने नाम पूछा, तो हमारा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है, श्री होता है ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण वगैरह, तो श्री हमारा फर्स्ट नेम है। तो हमने बताया, तो बाबा ने फिर से कहा क्या बोला बच्चे, तो श्री बाबा ये नाम है। तो बाबा ने कहा अच्छा बाबा, विश्व महाराजन की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, तो सबसे बड़ी क्वालिटी बाबा की यही थी कि जो व्यक्ति जैसा होता था बाबा उसके साथ उसी रूप में घुल मिल जाता था, बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसी बुजुर्गों वाली बात, युवान के साथ युवाने जैसी, बच्चों के साथ बच्चों जैसी। तो बाबा ने कहा अरे श्री, देखो दादी आओ, आओ दादी आओ, क्योंकि बाबा के साथ तो दादियां दीदियां सब चलती थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी तो बाबा भी श्री नहीं है, लेकिन आज बाबा को एक बच्चा मिला जो श्री है। तो हम तो सोचा कि कहते हैं ना सिर मुड़ाते ही ओले पड़े है ना, तो नए नए थे, श्री का मतलब भी नहीं जानते थे। तो बाबा ने बोला कि बच्चे श्री तो देवताओं के आगे लगता है, जिनकी आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र, इस कलयुग की दुनिया में तो कोई भी देवता जैसे है नहीं, न किसी का शरीर पवित्र है क्योंकि विकारों की उत्पत्ति है, और न आत्मा पवित्र क्योंकि सतयुग से लेकर जन्म लेते लेते आत्मा भी पावन से पूरी पतित बन गई है। अभी तो ब्रह्मा बाबा भी श्री नहीं लगा सकता, और इसीलिए अभी आज से बाबा तुम्हारा नाम मोहन करता है और श्री जैसा तुम्हें बनना है। तो बाबा से नया नाम मिल गया। तो ये भी एक बहुत बात होती है कि बाबा हर एक को, ज्यादातर करके उस समय, तब तो कम बच्चे होते थे आते थे, किसी का नाम माया देवी होता था, बाबा चेंज कर देता था। हमारे ही बड़े भाई एक थे, उन बाबा से जब मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है, बोला गरीब दास नाम है बाबा, नाम था तो, अरे अब गरीब थोड़ी, अब से तुम्हारा नाम अमीर चंद, तो हमारे अमीर चंद भाई वो नाम हो गया। तो हरेक को बाबा, ज्यादातर को, हरेक को तो नहीं, जिसका नाम थोड़ा ऐसा होता था उसका बाबा नाम बदल करके फिर उसका अर्थ सहित उसको बताते थे। तो इस तरीके से नाम बदलने का भी सौभाग्य मिल गया, भगवान के द्वारा नाम दिया गया, ये भी कम भाग्य की बात नहीं है। तो ये तो था पहला अनुभव शुरू से। तो इसका भाव ये है कि बाबा हर बच्चे को अपना पुराना जन्म भुला देना चाहता था, पुराना जीवन भुला देना चाहता था, चाहे नाम के साथ हो, और अगर किसी का नाम ठीक ठाक होता था आज बदलने की जरूरत नहीं होती थी, जो अधिकतर होता है, तो फिर बाबा यही बताता था, जैसा आज मुरली में है, मरजीवा जन्म है ना शुरू में, तो मरजीवा जन्म जीते जी, तो जीते जी ही नया जन्म, पुराने जन्म से मर गए और नए जन्म में जी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी की कर्मातीत अवस्था का जब आज हम वर्णन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी जब दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा बना, बाबा ने जब उनका नाम परिवर्तन किया, तो बाबा को भी यही मरजीवा जन्म जैसे दिया, और बाबा ने रियल सेंस में बाबा मरजीवा बन गया। क्यों? आप सबने सुना ही है, बस बाबा ने पुराना एकदम जल्दी छोड़ दिया, पार्टनर को बोला, इतने बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी थे पुराने, वो भाई भले हीरे जवाहरात के व्यापारी हों, अब तो मुझे वो हीरे जवाहरात पत्थर जैसे लग रहे हैं, अब तुम्हें जो कुछ रखना हो रख लो, जो पार्ट ऐसा देना हो मेरे हिस्से का दे दो। तो उस रीति से रियल सेंस में हम भी अपने को इंट्रोस्पेक्शन करके देखें, अंतर्मुखी होके देखे, वास्तव में मैं मरजीवा बनी हूं या बना हूं, पुराना जन्म से पुराने शरीर से मरने का मतलब, पुराना शरीर तो पुराना, शक्ल सूरत तो वही रहेगी। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैं भी वही हूं, वही कपड़े लौकिक में जो पहनता था वही बाद में भी पहने, वही पहन रहा हूं, लेकिन कर्मों में कम्प्लीटली रीति से नया जन्म। कहा हीरे जवाहरात के व्यापारी और कहा बाबा बिल्कुल कम्प्लीट सत्संगी हो गए। कहा आज भी बाबा ने बोला ना, हाँ बाबा सुदर्शन चक्र के द्वारा तुम्हें क्या बनाता है, माला माल बनाता है। तो बाबा ने हम सब बच्चों को वास्तव में माला माल, कहाँ ऐसी परिस्थिति भी आएगी एक वक्त की रोटी भी नहीं, तभी भी बाबा कहता था वी आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, माला माल है हा? ये नशा। तो इस तरीके से हमारे पास स्वास्थ्य की कमी हो, धन की कमी हो, संबंधों में कहीं पर उतनी अच्छा मधुरता न हो, तो भी हमें बेस्ट, यस आई एम बेस्ट, कभी भी ये ना करे क्या करूं, ये नहीं है, ऐसा होता तो ऐसा हो, नहीं। संगम युग में बाबा ने मुझे सबसे अच्छे से अच्छा ये जन्म दिया है, और कोई भी अपनी कमी का कोई वर्णन ना करे, बाबा वी आर द रिचेस्ट, ज्ञान धन से आपने हमें कितना रिचेस्ट किया है, सबसे धनी हम हैं, बाबा आपकी कमाल है, हमारा स्वास्थ्य भी, बस चाहे फिजिकल स्वास्थ्य हो शरीर का, चाहे मन का स्वास्थ्य हो, चाहे संबंधों का हो, सोशल हेल्थ हो, चाहे स्पिरिचुअल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, कोई भी हेल्थ हो, हमारी सारी हेल्थ बहुत अच्छी है। शरीर चाहे बीमारियों से भरपूर हो, बाबा कहता है क्या करो, दवाई को देख करके ये दवाई खाओ, ये काजू, ये किशमिश, ये बादाम, ये चिलगोजा, ऐसे मसा ड्राई फ्रूट को ना वो देखो, मतलब अनुभूति ऐसी हो कि मैं जैसे ये पुराने शरीर के साथ निमित्त कार्य कर रहा हूँ, ऐसे बाबा मामा दादियों ने चलाया, इतना पुराने से पुराना, बीमारियों से पूरा कंप्लीट, लेकिन बाबा किस नजर से देखता है। हमें याद है जानकी दादी की एक बात कि दिसंबर का महीना था 1999, 31 दिसंबर, दादी जानकी विदेश से बाबा से मिलने के लिए आए, क्योंकि 31 दिसंबर की रात को बाबा आता है। तो अहमदाबाद तक तो दादी पहुंच गए, थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी दादी की, लेकिन अहमदाबाद में आके बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों ने कहा अभी ये जा नहीं सकती, यहीं पर, और जिसको भी बुलाना हो बुलाओ, इनकी तबीयत अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो पता नहीं क्या होगा। तो ये मैसेज यहाँ भी दे दिया, 31 दिसंबर का दिन था ये, सुबह की वहाँ की लोटस में दादी ठहरी हुई थी अहमदाबाद में। और यहाँ पर बाबा जब मुरली चलाता है तो पहले क्या होता था, बाबा अव्यक्त बाप दादा जब मुरली चलाते थे, उसके बाद सब दादियाँ बाबा के आसपास इकट्ठी हो जाती थी, और विशेष करके बड़ी दादी या बड़े कोई भाई, निर्वैर भाई वगैरह। तो उस दिन भी बाबा के पास गए, बाबा जानकी दादी की तबीयत तो बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने बोला है कि बहुत मुश्किल है उनका रिकवर होना। तो बाबा ने बस दादी को दृष्टि दी और कहा कि नहीं बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा, उसे तो अभी बहुत सर्विस करनी बाकी है, और वो जो है बच्ची प्रकृति जीत है। दादा ने ये शब्द दिया जानकी दादी को, प्रकृति जीत। तो ठीक है उबे, और उसके बाद दादी भी अपने संकल्प शक्ति से ठीक होती गई, और अगले दिन दादी तो फिर आ गई यहाँ पर, कहाँ डॉक्टरों ने बोला, पैनल ऑफ डॉक्टर। और उसके बाद तक दादी 20 साल तक सेवा करते रहे, कोई दो चार दिन की, 20 दिन की बात नहीं, 20 वर्ष तक पूरे विश्व भर की कितनी सेवा की। क्यों? क्योंकि मन जीते जगत जीत तो बनते ही हैं, हम सब बन रहे थे, लेकिन प्रकृति जीते, ये प्रकृति से बना, 5 तत्वों से बना शरीर है। तो जितना हमारी स्ट्रांग आत्मा होती जाएगी, उतना उतना हम प्रकृति जीत भी बनते जाते हैं। तो इस रीति से बाबा ने उनको वो बोला। खैर ये तो दादी की बात रही, और वो अब बाबा की बात पर आते हैं। ब्रह्मा बाबा जो विशेष करके हमें बाबा मामा से पालना का तो सौभाग्य मिला ही है, लेकिन सबसे बड़ा एक सौभाग्य मिला है कौन सा, कि अंतिम दो दिन हम बाबा के सम्मुख ही थे, 17 और 18 जनवरी 1969 यहाँ पर, और यहाँ पर इन आँखों से ही पूरा दो दिन तक बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। ये हम अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं। क्या क्या चीज देखी वो हम खास वर्णन करना चाहेंगे, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत बनना है, और इसी के लिए आज का विषय खास रखा गया है। तो पहले 62 से लेकर 69 तक अनेक बार बाबा से मिले। पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि साल में एक बार आना है या दो बार, या यहाँ सप्ताह ही रहना है, जरूरत होती थी 15 दिन भी रह जाओ, 20 दिन भी, बहुत कम लोग होते थे। तो उस रीति से यहाँ पर जब भी बाबा से मिलते थे हम लोग, तो बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा पूछते थे कि हाँ बच्चे क्या पूछने आए हो, प्रश्न हम बताते थे, बाबा समाधान देते थे, और इस प्रकार से बाबा से वार्तालाप होता था। थोड़ा समय और बीता 62 के बाद, तो लगभग 64, 65 में हम लोग देखते थे बाबा के सम्मुख जाते थे, ये पूछेंगे, बस बाबा के सम्मुख जाते ही, दृष्टि लेते ही सब भूल जाते थे, क्या बात पूछनी है, क्या करनी है, बस दृष्टि लेते ही रहते थे, बाबा से बाहों में मिलते रहते थे, समाते रहते थे। तो जितना जितना आत्मा कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाएगी ना, तो इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों का भी ये होता जाएगा कि हम लोगों के सम्मुख भी जो और जनता आएगी बहुत प्रश्न लेके आएगी, बहुत, लेकिन सामने आते ही जैसे काफी बातें उनकी विस्मृत हो जाएंगी, भूल जाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा वंडरफुल क्या हुआ, 17 और 18 जनवरी को हमने इंजीनियरिंग पास करके धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वहां से हमने पढ़ाई करी, बाबा के कहने पर ही पढ़ाई करी, और फिर पोस्टिंग भी हमारी ONGC में जो हुई तो आसाम में हुई। तो आसाम में तो कोई भी सेंटर भी नहीं था, गीता पाठशाला भी नहीं थी, कोई व्यक्ति ही नहीं था, ब्राह्मण बच्चा पूरे 7 स्टेट्स में। और तभी तब हमें पता चला बाबा ने क्यों निमित्त हमें यहाँ भेजा, क्योंकि जब हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी तो 3 जगह हमारी पोस्टिंग हुई थी, एक दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल मौसम विज्ञान का जो ऑफिस होता है उसमें, एक हैदराबाद में हुई थी जहाँ पर रिसर्च वगैरह करते हैं, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरी ONGC में, जिसमें आसाम में जाना था फील्ड में। तो बाबा ने पूछा किस में जाना चाहते हो बच्चे, बाबा को बताया, तब तो साकार बाबा थे, कोई भी स्थूल बात होती थी कोई बात तो डिसीजन बाबा से लेते थे। तो बाबा को हमने बताया कि बाबा दिल्ली या हैदराबाद ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ हमारी पालना भी होती रहेगी, शहर हैं दोनों जगह, सेंटर भी हैं, आसाम में तो पूरा सेंटर भी कोई नहीं है, नियरेस्ट सेंटर कलकत्ता है, वो भी 1000 मील दूर है। तो बाबा ने थोड़ा सोचा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा चाहता है तुम आसाम जाओ, और आसाम में मेरे बहुत बच्चे हैं, उन्हें अभी तक संदेश ही नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा बाबा लेकिन वहाँ तो सेंटर ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, पालना की पालना तो अब इतने साल हैं, 62 में ज्ञान में आए और ये 69 की बात है, 7 साल तक पालना ले ली, अब तुम जाओ वहाँ पर और संदेश बाबा का वहाँ दो, उन आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को जो भगवान के ज्ञान के लिए तरस रही है। चलो वहां जाना हुआ, फिर भी थोड़ा दिल में था कि कोई भी सेंटर नहीं है, भाई बहन नहीं है, एकदम कंप्लीट नई जगह। तो बाबा ने कहा जाओ बच्चे, बाबा समय पर तुम्हें बुला लेगा, ये बाबा के महावाक्य थे। हमने भी सुना, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, गए उधर, और वहां जाते ही करण करावनहार तो बाबा है, हम बच्चों में तो ना मैं सेवा का अनुभव, न कोई भाषण का उतना अनुभव, न कोई, और क्लास तो मुरली पहने पड़ती हैं सेंटरों में, सब जगह जहाँ जा रहे वहाँ कोई बहन भी नहीं। तो वहाँ गए, लेकिन चूंकि करण करावनहार बाबा है, बाबा हर हफ्ते पत्र लिखता था, हर सप्ताह, बच्चे अभी वहाँ मंदिर में जाओ, मंदिर में तब 4 छेत्री हमारे होते थे, वो लक्ष्मी मतलब सीढ़ी, कल्प वृक्ष और त्रिमूर्ति झाड़, त्रिमूर्ति झाड़ सीढ़ी और कल्प वृक्ष, तो ये 4 चित्र फैला के बैठ जाते थे मंदिर में, सब आते थे मंदिर में, परिचय प्राप्त करते थे थोड़ा बहुत और चले जाते थे। धीरे धीरे परिवार के परिवार भी वहां आने लगे और बस कुछ चित्र देखते देखते ध्यान में चले जाते थे। छोटी छोटी बच्चियां भी, 7-8 साल की माताएं भी कुछ ध्यान में चले जाते थे, तो ऐसा भी होता था। उसके बाद फिर बाबा कहता था वहां शिव सागर नाम की जगह थी, लेक। तो बाबा बताने का तात्पर्य ये है कि करण कराव हम में कुछ भी ना हो, लेकिन बाबा का आवाहन करके जब हम सेवा करते हैं तो बाबा उसका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, निमित्त। तो इसीलिए हमने ये देखा कि बाबा आओ, मुरली सुनानी, बाबा आप आओ, इस आत्मा को समझाना है, निमित्त। एक बार का हमारा अनुभव है, इंग्लिश डबल फॉरेनर्स की पार्टी आई, अंग्रेजी में भाषण करने का तो अभ्यास नहीं था, तो 7-8 लोग थे, तो वहाँ एक ने बोला कि भाई जो निमित्त थे, ये मैं पहले आसाम जाने से पहले की बात बता रहा हूँ, बड़ौदा की, वहाँ पर सेंटर नहीं था, तो प्रदर्शनी एक भाई ने लगवाई थी, तो वहाँ पर हमारा उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज से एक्सकर्शन टूर जाता है, तो बड़ौदा गया हुआ था। तो बस इंग्लिश वाले आए, वो भाई ने बोल दिया, अरे ये भाई हैं, ये आपको इंग्लिश में समझाएंगे, हिंदी वो जानते नहीं थे। अब हमें तो इंग्लिश में समझाने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं, तो हमने कहा अच्छा आप ठहरिए तब तक प्रदर्शनी पहले चित्र के सामने, हम आते हैं। हम अंदर गए, बाबा आपकी इज्जत की बात है, आपको समझाना है, ये तन आपका है और बाबा आप कई बार मुरलियों में बोलते हो, जब समझाने वाला बुद्धू होता है और समझने वाले अच्छे होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनमें भी प्रवेश करके समझाता हूँ, तो आओ बाबा आओ, आज आपकी परीक्षा है। तो बस बाबा का आह्वान करके गए, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना फ्लुएंटली उन सब लोगों को समझाया पूरा प्रदर्शनी, और एकदम वो बहुत संतुष्ट होके अच्छी तरह समझ के गए। अब प्रदर्शनी तो 6-7 दिन की थी, फिर 3-4 दिन के बाद एक और ग्रुप आया ऐसे डबल फॉरेनर्स का समझने के लिए, तो हम तो अपने को 30 मार खां समझने लगे थे कि पिछली बार हमने समझाया, अभी भी समझा देंगे इन्हें कि। तो वो ग्रुप आया, खड़ा हुआ, हम जस्ट बाबा को याद किया, लेकिन प्रॉपर रीति से ना बाबा का आह्वान किया और ना बहुत कोशिश करी, लेकिन बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ लाइन थोड़ा बहुत टूटा फूटा समझा सके। तो यही बाबा कहता है कि आप बच्चे हर काम में मेरा आवाहन करके अगर कार्य करेंगे तो उस कार्य में सफलता होगी। तो ये हमारा अनुभव उसके बाद से सदैव से ही, जब से फिर उस मैं फिर आसाम बैक आ जाता हूँ, तो आसाम गए, पोस्टिंग हुआ, और वहाँ पर जो ये शुरू किया, तो वाकई बाबा ने कमाल की कि बस मारवाड़ी माताएं ही वहाँ ज़्यादा आती थी वो ज्ञान सुनने के लिए, क्योंकि बिजनेस सारा आसाम का बिजनेस मारवाड़ियों के हाथ में था, भाई लोग बिजनेस में रहते थे, माताएं घर में होते थे, फिर आ जाते थे क्लास में। तो इस तरीके से कुछ 3-4 महीने के अंदर ही 100 से बड़ी क्लास हो गई। क्यों हो गई उसका भी कारण बताते हैं, ज्ञान तो हमारा बड़ा मुश्किल है, लेकिन कई आत्माओं का जो ध्यान का पार्ट खुल गया, आते थे सुनते थे मुरली, सुनते सुनते एकदम ध्यान में चले जाते थे। कुछ छोटी छोटी कन्याएं थी, वो आके सुनाते थे, अरे हमने वहां रास किया श्री कृष्ण के साथ, माताओं ने जैसा पहला शुरू में पार्ट चला था ध्यान का, ऐसा काफी हद तक पार्ट वहां चला। तो कभी भी बाबा की कोई सेवा मिले तो हमने ये अनुभव किया, हमें चाहे बिल्कुल समझाने की प्रैक्टिस ना हो, उस सेवा का अनुभव ना हो, लेकिन ना नहीं करें। हाँ हाँ बाबा, हाँ दीदी दादी, समझाएंगे, करेंगे, ये सेवा करेंगे, और वो सेवा करो बाबा, फिर किस तरह वो सेवा में सफलता दिलाता है वो बाबा का काम। तो इस तरीके से वहां पर चला और एक वर्ष के अंदर, कुछ महीने के अंदर ही बहुत बड़ा सेंटर खुल गया। आसम जो हम सोचते थे एक गीता पाठशाला, छोटी गीता पाठशाला, दो चार लोग आते थे, उनसे वो हुआ अभी पिछले साल, उसकी वहां पर पिछले साल नहीं 2020 में जानकी दादी गए थे, उस वक्त उसकी डायमंड जुबली पूरे 50 वर्ष 69 में बाबा ने वो खुलवाया, और वहां पर 2019 में उसकी डायमंड जुबली हुई। तो देखो कहां पर एक गीता पाठशाला सेंटर भी नहीं और बाबा का काम बाबा कराता है। ये कभी ना हो मैंने किया, नहीं, बाबा कराने वाला। और तभी सफलता मिलती है जहां थोड़ा भी मैंपन आया, मैंपन जो है वो उस असफलता में बहुत नंबरवार बना देता है। अब मैं अंतिम दिनों की बात बताता हूं कि बाबा ने जब वहां चले गए और बाबा ने कहा था बच्चे समय पर तुम्हें बाबा बुला लेगा, तो हमारा देहरादून से लेटर आया था प्रेम जी का वहां पर कि भाई आप वहां पर आओ, म्यूजियम थोड़ा बनाना है। तो हमने बाबा को लिखा कि बाबा वहां जाना चाहते हैं, उनका पत्र आया। तो बाबा ने पहले एकदम तुरंत मैसेज दिया, बच्चे वहां जाओ, जरूर जाओ, लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ। तो ये जनवरी 69 की बात है, तो जनवरी में ही तुरंत हमने छुट्टी ली और मधुबन पहुंच गए, अपने लौकिक पिताजी को भी लिख दिया, देहरादून में थे वो, और हम दोनों 17 तारीख की सुबह, 17 जनवरी उस दिन सुबह यहाँ पहुंच गए जब बाबा साकार में थे। तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि भाई बाबा को अंतिम दो दिन देखने का मौका मिला। अब क्या क्या देखा वो उस आधार पर बाबा संपूर्ण कर्मातीत बने ना, तो वो मैं कुछ बताना चाहता हूं जो हम सबको अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि हमें भी ऐसा बने। क्योंकि कर्मातीत तभी बन सकते हैं जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। भीष्म पितामह का गायन है ना, बीज तो ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, ये हमने देखा किस रीति से ब्रह्मा बाबा को भी अंतिम दो दिन ये अनुभव हुआ। क्या हमें ये 17 तारीख को हम आए ना, दोगे फ्रेश होके बाबा से मिले हमेशा की तरह, तो उस बाबा को दृष्टि दी और हम क्या देंगे, बाबा ने दृष्टि दी और बाबा ने दृष्टि देते ही बस कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी हमेशा तो हम लोग बताते थे कि बाबा ये वहां सर्विस है, ऐसा हो रहा है, ये करें, लेकिन उस दिन हमने ये अनुभव किया बाबा ने कुछ नहीं पूछा, क्या पूछने आए हो बच्चे, नहीं, बाबा ने दृष्टि दी और कुछ सेकंड बाद बाबा ने कहा बच्चे ये करने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। तो मन, जिसने अपना मन जीता होता है वो दूसरे के मन का हाल भी जान सकता है। इस पर कई मुरलियां कर्मातीत अवस्था की एक सीरीज चली है और उसमें भी वर्णन है जो बाबा का 13 दिन का भोग लगा था, 21 जनवरी को बाबा का संस्कार किया गया और 21 जनवरी के बाद उसमें भी शायद पांचवे या छठे दिन है कि जब मन हमारा इतना मन के ऊपर जीत हो जाती है तो हम किसी भी मनुष्य के मन का हाल तुरंत जान सकते हैं और जान ही नहीं सकते लेकिन उसका समाधान कर सकते हैं। मन में कोई प्रश्न है उसका उसको बहुत सेटिस्फैक्ट्री उत्तर दे सकते हैं। तो एक बार देखा, दो बार देखा, इन दो दिनों में हम लगभग 6-7 बार बाबा से मिले। हर बार ये अनुभव हुआ, चाहे कोई धारणा की बात पूछनी हो, चाहे सेवा की बात पूछनी हो, चाहे योग की बात पूछनी, कुछ भी बात पूछनी होती थी, बाबा दृष्टि दे के बच्चे ये पूछने आए हो, तो ये एक तो कर्मातीत स्थिति का है। लेकिन इसके लिए हमें मन जीते जगत जीते, अपना मन जीतना होगा। और मन जीतने के लिए क्या करना है, जो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, हम लोगों की एक भट्टी में भी बाबा ने कहा था, जब कुछ भी व्यर्थ चलना बंद हो जाएगा तो मन जीते जगत जीत हो जाए। अभी बाबा ने सर्टिफिकेट दिया था हम लोगों की भट्टी में 10-12 साल पहले कि ये सब बच्चे जो हैं पुराने हैं, इनके विकारी संकल्प तो नहीं चलते लेकिन व्यर्थ संकल्प तो अभी भी चलते हैं। और जब व्यर्थ संकल्प चलना बंद हो जाएगा तो कर्मातीत अवस्था के निकटता का अनुभव होता जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा का भी ये प्रैक्टिकल में देखा कि बस बाबा आए, दृष्टि दी, मन का हाल जाना बताया, ये कर रहे हो बच्चे, ये सोच रहे हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा। तो पहली बात ये देखिए, इस बात पर हमको वो करना है, व्यर्थ की तरफ हमारा वो न जाए। हम चाहते भी हैं लेकिन कैसे करें ये, इसके लिए बाबा ने बताया है व्यर्थ संकल्प न जाए। हमें ऐसा अभ्यास होना चाहिए अपने ही अंदर जाने का, संपूर्ण रीति का। वो सुना होगा आपने, एक सन्यासी के पास में एक व्यक्ति गया, बहुत परेशान था, सत्संग चल रहा था वो भी बैठ गया, इतनी देर में भूकंप आया, बहुत सब तरफ हिलने लगे, सब चेले भागे बाहर, गुरुजी आओ आओ बाहर निकलो, बहुत अभी सब हिल रहा है, आपका भी छत हिल रही है, और गुरुजी वहीं बैठे रहे, बस आंख बंद किए हुए, वो लोग तो आंख बंद करके योग करते हैं, और सारे चेले भाग गए कि आपका छत बड़ी तेजी से हिल रही है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन गुरुजी बैठे रहे। फिर जब भूकंप रुक गया, चेले सब वापस आए, तो चेलों ने कहा, अरे गुरुजी हम सबको तो बड़ा डर लग रहा था कि हम सब तो बाहर भाग गए, खुले में चले गए, आप वहीं बैठे हो, आपको तो बहुत नुकसान हो जाता अगर। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं, तुम लोग भागे तो मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। तो कहा, गुरुजी आप तो वहीं बैठे थे, हमने देखे। नहीं नहीं, तुमने गौर से नहीं देखा, मैं भागा था, लेकिन फर्क क्या था, तुम बाहर भागे मैं अंदर भागा। बस अब यही, जब भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अभी आजकल फ्लड बहुत आ रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, हाँ स्थूल सेफ्टी भी हमें करनी है, लेकिन जितना हमें अंदर भागने का अभ्यास होगा, क्योंकि अंदर हमारी संपूर्णता की मूर्ति है, अंदर भागेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार, वो आपने सुना है ना, कई बार बाबा जब संदेशी जाती थी भोग लेकर के, तो संदेशी को क्या बोलते थे कि उस सूक्ष्म ब्रह्मा को देखना कि उसमें और इस स्थूल ब्रह्मा में क्या अंतर है। तो वो आके बताती थी कि बाबा शकल सूरत में तो आप दोनों एक जैसे ही हो सब कुछ, लेकिन उसका तेज बहुत है, लाइट जैसे रेडिएट होती है उसकी, निकलती है। तो बाबा का यही पुरुषार्थ होता था, बस अब मुझे भी फरिश्ता लाइट स्वरूप बनना है, और बाबा की वो सूक्ष्म संपूर्ण मूर्ति को बाबा कंपेयर करता था, हम सबके को सूक्ष्म वतन में तो जाने की कोई किसी को भेजने की कोई फैसिलिटी है नहीं, हमें अपने अंदर जाने का भागने का, जितना जाएंगे स्वतः ही दिखता जाएगा कि ये सूक्ष्म मूर्ति मेरी संपूर्ण मूर्ति में और इस वर्तमान स्थूल मूर्ति में क्या अंतर है, पता चलेगा। और उसका रिजल्ट ये भी पता चलेगा कि आने वाली घटनाओं का हमें आभास होता रहेगा। फ्यूचर में कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर कहते हैं ना, तो इस तरीके से कोई घटना होने वाली होगी। बाबा ने कहा है हर बच्चे का टीवी सेट मेरे पास वतन में है, हर बच्चे का, सब ऑफ रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई बच्चा कमजोर परिस्थिति से पास हो रहा है, माया के वश में हो रहा है, विकारी संकल्प उसे परेशान कर रहे हैं, तो उस बच्चे का टीवी ऑन हो जाता है। फिर बाबा का ध्यान जाता है, इतने सात टीवी में दो चार ये टीवी ऑन है, तो बाबा देखता है वो बच्चे की क्या कमजोर परिस्थिति है, तो फिर बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है। तो बाबा शक्ति देता है, सकाश देता है, और अगर उस बच्चे की बुद्धि क्लीन और क्लियर हुई वो सकाश को ग्रहण कर लेता है, अगर नहीं हुई, लौकिक बातों में उलझी हुई होगी उसकी बुद्धि, तो बाबा शक्ति दे भी रहा है उस माया से निकलने की, लेकिन वो बच्चा निकल नहीं पाएगा। कई बच्चे सकाश को ग्रहण करके निकल भी जाते हैं, पास हो जाते हैं, कई बच्चे जो अपने लौकिक में ही उसमें ही फंसे रहते हैं वो नहीं। तो हमें कोई ना कोई टाइम फिक्स अपने लिए, ये बहुत गहरी बात बता रहे हैं, अपने लिए कोई ना कोई टाइम 10 मिनट का 15 मिनट का ही सही वो फिक्स करना चाहिए। ये मेरा बाबा से अपॉइंटमेंट है। तो अगर कोई पूरे दिन भर में कोई परिस्थिति ऐसी आई जिसमें हमारे हारने की संभावना भी हो, बाबा पहले ही हमें जागृत कर देता है। हमारा तो बहुत बार का अनुभव है कि बाबा अनेक बार, जैसे वो करता नहीं तो डिफिकल्ट हो जाता है कि संकल्प आया ये करें या ये, भाई कौन सा संकल्प सही है, ये बाबा का संकल्प है या मेरा अपना संकल्प है। कई बार हमारे मन में ही संकल्प चलते हैं, हमें आभास नहीं होता ये मेरा या बाबा का है। लेकिन उस परिस्थिति में अगर हमने कोई अपने लिए टाइम फिक्स किया है, मानो सुबह 10 से 10:15, वो तो खैर ऑफिस का या बिजनेस का, या सुबह मानो या शाम को कोई टाइम, ये मेरा बाबा से टाइम है, तो बाबा जो है आपकी बुद्धि को इतनी क्लीन और क्लियर करते रहेगा कि आपके पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां सफलता होगी। ऑटोमेटिकली हमें सोचना नहीं पड़ेगा, बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट बोला, ये नहीं ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, नहीं, ऑटोमेटिकली पैर उधर बढ़ेगा जहां सफलता होगी। तो ये कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए बाबा का, इसीलिए बाबा की बुद्धि बहुत क्लियर और कुशाग्र धीरे 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 होती गई ही कि बाबा ने जो अपना कुछ टाइम मुकर्रर किया हुआ था। तीसरी बात, जब आत्मा के प्राण, आत्मा प्राण निकलते हैं शरीर से, तो कहते हैं उस समय उसे वो या व्यक्ति या वस्तु वैभव परिस्थिति वो याद आती है जो अति प्रिय है या अति जिससे दुश्मनी है। वो व्यक्ति याद आएगा जिसमें मोह है, बार बार वही बच्चा पोता पति पत्नी कोई वो याद आएगा, या जिससे थोड़ा भी दुश्मन भाव है। तो इसीलिए बाबा ने अभी पिछले कुछ सालों से क्या बताया है, क्या बताया हुआ है, प्रेम सबसे हो, लेकिन किसी से अति प्रेम न हो, अति कि कोई बात है उसको बताए बिना हम रह ना सके, जैसी कोई नई बात या कोई ऐसी बात बस एकदम तुरंत वही मित्र सखी वो याद आएगा, जैसी जाएंगे आओ ये बात बताते हैं बस। अति मित्रता अगर होगी तो जरूर किसी से अति दुश्मनी भी होगी। तो अभी क्या चाहिए, जैसे कबीरदास ने बोला ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। अभी ये परिस्थिति होनी चाहिए, न किसी से बहुत अति प्रेम हो न किसी से अति दुश्मनी का हो, ये कर्मातीत अवस्था के निकटता की निशानी है। जो बाबा में देखा बस न्यारा और प्यारा, सबका प्यारा, सबको ये लगता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, हर एक को ये लगता था आओ बच्चे चलो बाबा एकदम इतना प्यार, और न्यारा बिल्कुल ऐसा भी हो जाता था कि जैसे किसी चीज का आप आए बाबा दूसरे ख्याल में खोया हुआ है उसका आभास भी नहीं, न्यारा प्यारा की यही गति। अगर हम किसी का प्यारा बनने की कोशिश करेंगे तो न्यारा नहीं बन सकते, ये एक तीसरी बात। चौथी बात, कोई भी बात हमारी पेंडिंग न रहे, अधूरी। अगर सोची हुआ हमने मुझे बेईमानों कन्या का समर्पण करना है, बाबा का मकान बन रहा है, रिट्रीट सेंटर इतना दान करना है, शुभ भावना है, अक्सर देखा गया होती है, करते भी हैं, लेकिन कई बार हम चीज को पोस्टपोन, अच्छा कल कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में ये काम कर लेंगे। अच्छा काम अगर पोस्टपोन करते रहे तो वो कोई भी परिस्थिति कभी आ सकती है, शरीर का भरोसा नहीं। तो अगर उस दौरान अगर शरीर छूटा, कई बार ऐसा होता है यहाँ भोग लगाते हैं परिवार वाले आते हैं, कई बार वो आत्मा आती भी है, वो आके बहुत आंसू भी निकलते हैं, पूछते हैं भाई क्यों आंसू निकल रहे हैं, भाई मैंने ये सोचा था काम करने का, कैपेबल भी था, लेकिन मैं बस पोस्टपोन करता रहा, कल कर लेंगे, और मेरा कल कल करते काल आ गया, मैं नहीं कर सका। बाबा मैं वैसे बच्चे को तो कह के आया हूँ तुम्हें ये काम करना ऐसा, तो बाबा कहते हैं अगर अब बच्चा करेगा तो बच्चे का भाग्य बनेगा, तुम्हारा भले तुमने कहा है लेकिन बच्चा करे ना करे और उसके पर आधारित है। तो हम कोई चीजों को पोस्टपोन ना करें, टालते ना रहें। अक्सर करके हम सब लोगों की ये आदत होती है, हमारी भी कई चीजों में ऐसी आदत है, तो वो टालने का संस्कार ये खत्म होता रहे। तो बाबा ने अंतिम दिन भी आपने सुना होगा जितने पत्र बाबा को, तो तब ये ईमेल और ये सब तो था नहीं, तो बाबा पत्र लिखते थे, मेरे पास अभी भी 10 पत्र बाबा के रखे हुए हैं वो, और लाल उससे बाबा पत्र लिखते थे और बीच में जो जगह होती थी उसमें नीले रंग से यीशु दादी उसकी ट्रांसलेशन, क्योंकि बाबा का पत्र तो सिंधी में होता था, सिंधी में बाबा पत्र लिखते थे, हिंदी में ट्रांसलेशन करके यीशु दादी वो भेजा, तभी हम लोग पढ़ सकेंगे। तो वो जब भेजा जाता था तो बाबा ने 18 जनवरी की सुबह ही बोला यीशु दादी को, बच्ची जो भी पत्रों, वो बाबा का शेड्यूल डेट नहीं थी पत्र का उत्तर देने की, सप्ताह में 2 बार बाबा पत्र के उत्तर देता था ज्यादातर, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा बच्ची जो भी पत्र आए हुए हैं सब ले आओ, आज कोई भी एक भी पत्र ऐसा न रहे जिसका उत्तर न दिया हो। किसी बच्चे को संकल्प नहीं चलना चाहिए मैंने बाबा को पत्र लिखा, बाबा को जवाब नहीं आया। तो बाबा को पहले आभास हो गया था, ऐसे ही मुझे और आपको भी आभास होगा हमारा लगभग अंतिम क्षण, लेकिन कब होगा जब उस परिस्थिति के हम निकट पहुंचते जाएंगे और वो निकटता का आभास का तब होगा जितना हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी। और वो कैसे होगी क्लीन और क्लियर, वो बाबा ने उसका एक बताया है कि भगवान को क्या बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदर, वो सत्य है। जितना हम सच्चे होंगे उतना हम सुंदरम शिवम और सुंदरम सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सत्यता का और कोई गुण हो ना हो, सत्यता का हमारा गुण हो। और बाबा ये कई बार सत्य बोला करते थे, बच्चे सच्चे बन के। बाबा क्यों बोल रहा है ये, कोई विकर्म करके आए हैं पुरानी दुनिया में, तो अज्ञान काल में तो सभी विकर्म करते हैं। हम सब ने भी अज्ञान काल में बहुत झूठ बोला होगा, मारा पीटी झगड़ा किया होगा, वो बात होती है। तो इसीलिए बाबा ने मार्जिन रखा है कि बच्चे भगवान जब साकार में आया है तो बाबा को अगर बता दोगे ना तो क्या होगा, आधा माफ हो जाएगा। अब क्या प्रोविजन है, अब तो साकार में बाबा है नहीं, अभी भी है। कैसे है, जैसे जब आप आते हैं ना, बड़ी निमित्त बहने हैं, दादियां हैं, अभी तो दादियां भी कोई नहीं है, लेकिन मेन ये है हम सच्चे दिल से कागज पर लिख करके कोई विकर्म या निगेटिविटी हो वो लिखें, अपना नाम वगैरह चाहे ना लिखें, जगह ना लिखें, क्योंकि ये होगा किसी ऐसे के हाथ लग गया वो अननेसेसरली बदनाम भी कर दे। लेकिन ये लिख के बाबा के जहां जहां भंडारी है वहां डाल दे। एक है भंडारी, एक है बाबा के पत्रों का, वहां पर भी है ना, तो पत्र वाले में बाबा ये हुआ। हमारे लिखने के साथ ही बाबा तक वो पहुंच जाता है और उसका प्रमाण ये है हमारा दिल हल्का हो जाता है। कोई विकर्म किया होता है तो मन भारी होता है, और जितना जितना विकर्म कम होते जाएंगे, योग बल बढ़ता जाएगा, उतना उतना मन और हम हल्के होते जाएंगे। तो इसीलिए बाबा, और जितना हल्के होते जाएंगे उतना बाबा की बात को, टचिंग को हम कैच करते जाएंगे, और फिर अकॉर्डिंगली हमारा पुरुषार्थ वैसा ही होता चला जाएगा। तो ये उस दिन अंतिम दिन की बात मैं बता रहा हूं, बाबा ने ये सारी बात करी। और लास्ट में क्या किया, बाबा ने क्लास कराई अभी, क्योंकि टाइम पूरा हो गया तो 5 मिनट में मैं पूरा करता हूं। बाबा ने 18 जनवरी की सुबह क्लास नहीं कराई थी, 18 जनवरी की रात्रि क्लास कराई, और सबको इंस्ट्रक्शन दे दी कि सब भोजन करके आए हैं, और क्लास रोज 9 बजे होती थी, आज क्लास 8 बजे ही हो जाएगी, 7:30 बजे जैसे। तो सब भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को मालूम था, बुद्धि इतनी स्पष्ट हो गई थी कि ये मेरी बच्चों से अंतिम मिलन है, और अंतिम मिलन में भोजन करके आएंगे तो पहले खाया होगा, बाद में तो कोई खाएगा नहीं, बाबा शरीर छोड़ देगा, उसके बाद तो भोजन होगा भी तो भी रखा रह जाएगा, कोई खाएगा नहीं। इसीलिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी सब भोजन करके आए, और अंतिम मुरली जो बाबा ने चलाई उसमें ये ब्यूटी थी, हमेशा तो सर्दी के दिन थे, 93 वर्ष बाबा की आयु थी, इतना खांसी भी कभी कभी आती थी, कफ भी साफ करने की जरूरत करती थी जैसे कफ आता है ना, लेकिन उस दिन 18 जनवरी की आप मुरली पढ़ लो, यहाँ पर लास्ट मुरली भी मिलती है, मुरली वाले के पास जाएंगे वो कैसेट भी दे देगा, अंतिम साकार मुरली 18 जनवरी की। तो उस दिन मुरली में बाबा को न एक बार भी खांसी आई, न कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, न शरीर में कोई व्याधि थी, और वो दिन बाबा ने मुरली एकदम इतनी फास्ट इतनी क्लियर चलाई, और उसके बाद मुझे, मैं तो साकार में वहीं था, सामने बैठा हुआ था, मुझे बस एक संकल्प आया बाबा के सामने, जैसे अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं ना, संकल्प होता है ना, मुझे भी स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, दृष्टि मिल जाए। कुछ बड़े सीनियर भाई बहन जाते हैं ना, तो हर एक को दिल होती है। तब तो साकार में ही बाबा थे, तो ये सब तो बात नहीं थी, टोली तो रोज ही मिलती थी बाबा के हाथ से डेली क्लास के बाद, इसलिए वो कोई बात नहीं थी। लेकिन संकल्प आया कि बाबा कुछ कहे मेरे लिए, कुछ कहे उन्नति की बात। बस संकल्प आने की देरी नहीं हुई, संकल्प आया और बाबा तो संपूर्ण रीति से कर्मातीत बन चुका था, मुरली चला रहा था, कोई व्याधि नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा ने एकदम तुरंत ही जैसे नाम लेके कुछ महावाक्य उच्चार दिए है, वो आज भी 18 जनवरी की मुरली जो है ना साकार, उसमें बाबा के महावाक्य हमारे लिए जो बाबा ने उच्चारे वो उपलब्ध है। तो क्योंकि मन में संकल्प आया, लौकिक में कहते हैं भक्त के मन में संकल्प आया और भगवान ने पूरा किया, तो हम सब भी तो अनेक जन्मों के भगवान के भक्त है ना, और साकार में भगवान आया हुआ था ब्रह्मातन में, फिर मुरली चला के बाबा गए, और बाद में बस जैसे एक विशेषता थी, कई बार अक्सर करके बाबा जैसे इधर से आते थे ये हिस्ट्री हॉल में, तो मुरली चला के अब बोल के हम जाएंगे तो उधर मुंह होगा और निकल जाएंगे, लेकिन बाबा इधर देखते हुए बैक, हाँ कुछ कदम पास में ही है, 5-6 कदम बैक करते। तो बच्चों ने पूछा बाबा आप ऐसे कई बार, उस दिन नहीं पहले, कि मैं ये बच्चे तो डबल महाराजा महारानी है, स्वराज अधिकारी हैं इस समय के, मैं तो शिव बाबा जैसे कहता है मैं तो सतयुग में जाता नहीं, इसीलिए मैं तो सिंगल हूं और मैं डबल स्वराज अधिकारियों को कैसे पीठ दिखा सकता हूं। देखो कितनी महान भावना भगवान की हम बच्चों के लिए। खैर उस दिन बाबा गए, अंत में जाके बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, और करके निराकारी निरंकारी निर्विकारी बाबा गए कमरे में, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। और उसके बाद बाबा का शरीर 3 दिन तक रखा रहा, 18 जनवरी की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की सारी रात, 21 को भी दोपहर के बाद संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी टूर पर थी, वो नहीं आई थी, वो 21 को ही 11-12 बजे पहुंची, और उसके बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर 3 दिन के बाद भी ना चमकता रहा लाइट, और बिल्कुल कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई। तो ये है प्रकृति जीत का लक्षण, मन जीते जगत जीत का तो वो लक्षण सुनाई दिया, कि बिना बोले ही बाबा उसके मन का हाल जान के वो बता देता था। ये है प्रकृति जीत का लक्षण, प्रकृति से बना 5 तत्वों से इस शरीर पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और सबसे बड़ी बात हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, जैसे भीष्म पितामह का गहन ब्रह्मा के लिए है, हम बच्चे भी तो मास्टर भीष्म पितामह हो गए। तो इस तरह कर्मातीत अवस्था के ये जितने लक्षण हैं, इन सबको धारण करके लक्ष्य बुद्धि में रखना है कि मुझे ये छोड़ना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
लंबे काल के अनुभव के खजाने से संपन्न साकार मम्मा बाबा के इतने सुंदर यादगार पलों को अपने अनुभव के खजाने में समाये हुए आदरणीय मोहन सिंगल भ्राता जी का हम तहे दिल से एक हाथ हिलाकर शुक्रिया करते हैं कि सुंदर खजाने से ने सुंदर अनुभव जो थे वो हमें सुनाए, हमें भी उन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनाया। भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया है।